शांति। हर श्वास शिव के नाम है, यह प्रेम भी अविराम है। परमात्मा प्रेम सतत धारा हो, परमात्मा प्रेम अविरल प्रवाह हो, परमात्मा प्रेम जीवन में बहता कलकल निनाद करता सतत एक अनुभव हो। तो आज साधना का दूसरा दिन, साधना के 10 नियम कल हमने देखे थे। मौन का अभ्यास, याद का अभ्यास, मनन का अभ्यास, माइंड मास्टरी, ब्रह्मचर्य का अभ्यास, मिताहार और रोज लिखना अपनी दिनचर्या, और इस सारे जगत को दिन में कई बार ऐसे देखना जैसे कि ये खेल चल रहा है। क्या क्या हो रहा है इस खेल में, दूर से देखना और हंसना, और कभी कभी अपने ऊपर ही हंसना। हम खिलौने हैं, वो खिलाड़ी है, खिलाड़ी खिलौनों से खेल रहा है। और मधुबन के 8 धाम, मन से चक्कर लगाना है। जो मधुबन के बाहर रहते हैं वो भी, और जो मधुबन में रहते हैं वो भी, मन से मधुबन, मन को मधुबन में घुमाना, मधुबन की वीथियों में, मधुबन की गलियों में, चेतना घूमे नदी की तरह, अनुभव करना और पूर्वजों का एहसास, पूर्वज मुझसे क्या कह रहे हैं, वो ऑफ ऑर्बिट बीइंग्स, वो गार्डियन एंजल्स मुझसे क्या कह रहे हैं। तो ये सारी साधना है लाइट बॉडी एक्टिवेशन की, ये सारी साधना है 84 दिनों की, जो सूक्ष्म शरीर है वो कैसे सक्रिय हो जाए और उस सूक्ष्म शरीर का हम कैसे अनुभव करें। तो आज साधना के दूसरे दिन हम देखेंगे ऑरा क्लिंजिंग, आभा मंडल की स्वच्छता कैसे की जाए। ऑरा क्लिंजिंग, इसकी लगभग 18 विधियां। ये ऑरा क्या होता है? हमारा जो शरीर है विद्युत कणों से बना हुआ है, शरीर बना है अंगों से, अंग बने हैं ऑर्गन से, ऑर्गन बने हैं टिश्यू से, टिश्यू बने हैं सेल्स से, सेल्स बने हैं कोशिकाओं से, एटम से, एटम्स बने हैं किससे बने हुए, इलेक्ट्रॉन फोटोन न्यूट्रॉन्स, ये सब घूम रहे हैं, वाइब्रेशंस है सूक्ष्म। इसलिए विज्ञान भी पहले कहता था कि सारा जगत मैटर है, पर अब कहता है मैटर नहीं है, मैटर कुछ भी नहीं है, ओशन ऑफ एनर्जी है, ओशन ऑफ वाइब्रेशंस है, हर विचार एक प्रकंपन है और हर व्यक्ति अपने इर्द गिर्द एक प्रभा मंडल निर्माण करता है। एक रिक्त जगह होती है यहां, उस रिक्त जगह को आभा मंडल कहते हैं, ऑरा प्रभा मंडल। और ये जो प्रभा मंडल है ये बहुत सारी चीजों से प्रभावित होते रहता है सारे दिन भर। हम किन लोगों के संपर्क में आए, नेगेटिव सिचुएशंस में गए, स्ट्रेस में गए, तो ये जो ऑरा है ये दूषित हो जाता है। निरंतर इस ऑरा को स्वच्छ कैसे रखे, ये पुरुषार्थ है। इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ स्थूल बातें, कुछ सूक्ष्म बातें। और जब ऑरा प्रभावित हो जाता है तो शरीर में कहीं ना कहीं बीमारियों का फिर जन्म होता है। बीमारियां बहुत बाद में आती है, पहले ऑरा प्रभावित हो जाता है, किसी स्ट्रेस से, किसी निगेटिव एनर्जी से, ब्लैक एनर्जी से। हमें बनना है एंजल ऑफ लाइट, एक ऐसा फरिश्ता जिसमें क्या है, आज की मुरली, हर संकल्प में क्या क्या हो, मुरली कौन पढ़ के आया? हर संकल्प में क्या चार बातें, स्नेह कैसा, शुद्ध निस्वार्थ सच्चा दिल का, हर संकल्प में स्नेह हो, हर संकल्प में सहानुभूति हो, हर संकल्प में रहम दिल और हर संकल्प में दातापन का नेचुरल नेचर, ये चार चीजें होनी चाहिए। और चार बातें, कौन सा मिलन, विचार का मिलन, संकल्प का मिलन, संस्कार का मिलन, और चौथा मधुर मिलन नहीं, चौथा कौन सा, स्नेह मिलन। जब ये होगा और मोल्ड होना होगा तो ये सफलता के लिए क्या बन जाएगा, चुंबक, आत्माएं स्वतः आकर्षित होते हुए आएगी। बाप आए हैं स्नेही आत्माओं से मिलन मनाने, कौन सी स्नेही आत्माएं, जो अपने स्नेह की लहर विश्व में फैला रहे। कौन सी भाषा है ये भगवान की, ये कैसी भाषा है, दिस इज अ लैंग्वेज ऑफ एनर्जी, दिस इज अ लैंग्वेज ऑफ वाइब्रेशंस से बात करता है भगवान। बाप आए हैं क्या करने, बच्चों पर स्नेह के फूलों की वर्षा करने। कौन से फूल कहां मिलते हैं किस झाड़ पर उगते हैं, किस तरह की भाषा वो बोलता है। रावण ने कौन से फूल बरसा दिए हम पर, नफरत के, घृणा के द्वंद है अंदर। हर आत्मा एक द्वंद की स्थिति में है, हर आत्मा एक युद्ध की अवस्था में है। बाबा ने आज कहा ना प्रश्न उत्तर में, योद्धा ब्राह्मण नहीं बनेंगे, जो फरिश्ता है जो ब्राह्मण है वो उसमें योद्धा के संस्कार नहीं होंगे, अधिकारीपन के संस्कार होंगे उनमें। क्योंकि कहाँ आना है, आदिकाल में आना है। क्वेश्चन नंबर टू, तो ये जो प्रभा मंडल है, ये जो ऑरा है, बहुत सारी चीजों से दूषित हो जाता है। क्रोध के शब्द बोल दिए, बेचैनी हो गई, ऑरा मंडल डिस्टर्ब्ड। क्या करे जो हमारा ऑरा स्वच्छ हो जाए, क्लेंजिंग इसको कहते हैं, उसकी हम कुछ विधियां आज देखेंगे। 18 पहले स्थूल, क्योंकि स्थूल जो है ना हमें ज्यादा समझ में आता है, उसको कहते हैं स्पिरिचुअल फर्स्ट टेक्निक, स्पिरिचुअल पाथ, या फिर बेदिंग। सॉल्ट वाटर सबसे अच्छा कहा जाता है, समुद्र में जाके नहाओ तो फिर ऑरा स्वच्छ हो जाता है। प्रभा मंडल समुद्र या कोई तालाब, पर समुद्र अब कहाँ ढूंढेंगे। सो सेकंड मेथड, हिमालयन पिंक सॉल्ट, सी सॉल्ट, जो नमक आता है वो नमक, या तो रोज या लेवेंडर या एसेंशियल ऑयल्स बहुत सारे आते हैं, वो पानी में डाल दो और उस नमक के पानी से स्नान करना। वो जो ऑरा है उससे क्लेंस होता है। और क्या करना, ये देखना कि ये जो पानी मेरे शरीर पर पड़ रहा है ये साधारण पानी नहीं है, उसमें हम बहुत सारे ज्ञान की बातें जोड़ सकते हैं, ये प्रभु प्रेम का पानी है। और ये पानी गिर रहा है और ये सारी निगेटिव एनर्जी, जो बहता हुआ पानी देखो और सोचो कि ये निगेटिव एनर्जी बाहर जा रही है। इसको कहते हैं स्पिरिचुअल बाथ, इसको कहते हैं बेदिंग। अब दो मेथड्स है इसकी भी, एक तो है कि पूरा नमक पानी में डाल दो थोड़ा सा, एक मुट्ठी, और फिर स्नान कर लो। एक तो ये, कई लोग इसको दूसरी रीति से करते हैं, वो नमक को पहले अपने शरीर में लगा लेते हैं मतलब थोड़ा गीला करके, और फिर उसके बाद में पानी डालते हैं, वो भी एक मेथड है। तो ये जो सॉल्ट वाटर, हिमालयन पिंक सॉल्ट या इस तरह की जो सॉल्ट है, ये क्या क्लेंजिंग करता है ऑरा का। और स्पेशली जो एनर्जी हीलर्स होते हैं, जो हीलिंग करते हैं, वो हीलिंग सेशन के बाद में जाकर ऑरा हीलिंग ये करते हैं, स्वच्छ करते हैं अपने आप को, या फिर अचानक विकर्म हो गया मन से या शरीर से भी, तब भी इसका प्रयोग किया जाता है। बट ये एक धार्मिक अनुष्ठान की तरह किया जाए, रिलीजियस रिचुअल की तरह, बहुत धीरे धीरे से। कोई लोग कहते टब में ना हो, ताकि वो पूरा हमारा ऑरा स्वच्छ हो जाए, पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए। ये है तो बहुत स्थूल बात, परंतु इसके साथ सूक्ष्म को जोड़ना है। मन का इंटेंशन क्या है वो इंपॉर्टेंट है। गए और पानी में डाला, इसको अगर केवल कारोबार बना दिया या एक क्या कहते हैं रोज की सिस्टम बना दिया, एक ही परिपाटी बना ली, पानी डाला लिया और आ गए, कुछ नहीं होना। जो हो रहा है एक्चुअली पानी से नहीं हो रहा है, ना ही नमक से हो रहा है, इंटेंशन से हो रहा है, मन में हो रहा है। हम किस भाव से उसको कर रहे हैं, हम इस भाव से कर रहे हो कि आज का मेरा दिन बहुत डिस्टर्ब रहा, पूरा दिन इतने लोगों से लड़ाई करनी पड़ी, इतने लोगों को मनाना पड़ा, जबरदस्ती करनी पड़ी, जोर से बोलना पड़ा, क्या कुछ करना पड़ा, फिर भी लोग मानते नहीं। सारी लड़ाई ही लड़ाई चालू है, एक सूक्ष्म लड़ाई चालू है। ऊपर से तो शाम के योग में एकदम बैठे आराम से, और अंतर मन में महाभारत, इसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे ऐसा कहा, ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है, इस भाव से कि ये मुझे एनर्जी बात लेनी है, क्लेंजिंग बात है, ये सफाई है, मुझे अपने अंतर मन की सफाई करनी है। और ऊपर ऊपर से सफाई नहीं करनी है, गहरे मन की सफाई करनी है, सबकॉन्शियस माइंड की सफाई करनी है, उसमें ये जो पानी मेरे शरीर पर पड़ रहा है ये सारी निगेटिव एनर्जी को बहाकर बाहर ले जा रहा है, ये मेथड। सो फर्स्ट मेथड इज बेदिंग, सेकंड मेथड कोम्बिंग, जो अभी हम अभी करेंगे यहां पर। कोम्बिंग पता है ना, कोम पता है ना क्या होता है, कंघी। तो अपने हाथ की कंघी बनाओ ऐसी, ठीक है। सभी हाथ की कंघी बनाना, और पहले राइट साइड और फिर लेफ्ट साइड, और सोचो या बाजू में एक बकेट है जिसमें आग जल रही है या तो नमक का पानी है, जो हम निगेटिव एनर्जी हमारे शरीर में है उसको निकाल कर उस पर डालते जाएंगे। तो यहाँ से चालू करके पहले तो चेहरे को कोम करना है और फिर उसमें डालना, फिर इधर हाथों को कोम करना, फिर पैरों को कोम करके इधर डालना, फिर इस हाथ से या इस हाथ से इधर का कर सकते हो, पहले दोनों का साथ साथ कर सकते हैं, इसको कहते हैं कोमिंग। सब कर लो एक बार शांत, पहले आंखें बंद एक मिनट के लिए, स्थिर बैठेंगे और फिर कोम बनाएंगे हाथ का एक कंघी, और ये सोचेंगे कि जो भी मेरे अंदर निगेटिविटी है, डर है, भय है, डीप रूटेड सेंसिटिव नेचर है जो बार बार डिस्टर्ब होते रहता है, या किसी और आत्मा का जो निगेटिव प्रभाव मुझ पर है, वो सारा मुझे निकालना है। तो चालू करेंगे स्वीपिंग, दोनों हाथों से ओम शांति। तो जब भी बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में आए, हमें पता नहीं कौन किसके साथ हमारे किस जन्म के क्या हिसाब है, किसको पता नहीं हमने कितना दुख दिया था, किसको पानी में डुबो के मारा था, जिसको बचपन से पानी का भय है और उसका कारण हम है, और वो सामने आ जाए अचानक, वो हमें जानता नहीं, हम उसे जानते नहीं, परंतु फिर भी उसके मन में एक अज्ञात घृणा है हमारे प्रति, एक बदले की सूक्ष्म भावना है। वो क्यों है वो उसे भी नहीं पता, क्योंकि वो भी भूल चुका है, हम भी भूल चुके हैं। परंतु मरने के बाद सूक्ष्म शरीर मरता नहीं है, स्थूल शरीर गिर पड़ता है। सूक्ष्म शरीर किसका बना है, विचारों का बना है, वासनाओं का बना है, इच्छाओं का बना है, संस्कारों का बना हुआ है, भावनाओं का बना हुआ है। वो सारा कुछ सूक्ष्म शरीर लेकर आत्मा साथ में लेके जाती है, दूसरे गर्भ में स्थापित हो जाती है। इस जन्म की बातें भूल जाती है, किन किन आत्माओं को याद रहता है या याद आता है बाद में हिप्नोटिक रिग्रेशन से, या फिर दरवाजे खुलने लगते हैं। कई लोग अभ्यास करते हैं रोज बैठ के, पीछे पीछे 10 साल पहले, 12 साल पहले, बचपन में, एकदम बचपन, स्कूल, उससे भी पीछे, जैसे दरवाजे, ये दरवाजा खुला, फिर अंदर गया, फिर दूसरा दरवाजा, एक दरवाजा लास्ट आता है, उसमें हम ठक 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 करते रहते, वो नहीं खुलता है। मैं गर्भ में हूँ, वो अगर खुल गया तो पिछले जन्म का दिखेगा, और उतना ही स्पष्ट दिखेगा जब मैं जो मैं इन आंखों से सबको देख रहा हूँ, इतना ही स्पष्ट, पर वो दरवाजा खुलता नहीं है। किन किन का खुल जाता है, जो कंटिन्यूस अभ्यास करते रहते हैं या हिप्नोटिक रिग्रेशन से दूसरा उनको कराता है, तो वो दरवाजा खुलते ही पुराना सब कुछ दिखने लगता है। फिर उसकी एक मेथड ये भी है, मधुबन में जब आते हैं, मधुबन के आंगन में बैठो और सोचो इस जन्म के पहले का मेरा जो जन्म था, 83rd बर्थ, ये 84th है, वो यही था। याद करने की कोशिश करो, ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट में देखो कुटिया को, वो बाबा के कमरे को, वो शांति स्तंभ को देखकर सोचो यहां मैं कब आया था, मेरा इसके पहले का जन्म यही का है, यही का है। कोई लोग चिन्ह ले लेते हैं, कोई वस्तु, उसको सामने रखते उस मूर्ति को, और उसको देखते रहते देखते रहते देखते रहते, उस मूर्ति को देखते देखते पिछले जन्म की स्मृति आती है। कितना अच्छा हो जाएगा ये भी, इससे हेल्प होगी, क्योंकि हमारे इस जन्म के डीप रूटेड कुछ कुछ संस्कार पिछले जन्मों के जुड़े हुए, अगर वो हमें पता, हमें पूरे 63-84 जन्म की बात नहीं कर रहे, बस एक जन्म इसके पहले का, क्योंकि अभी जो कुछ हो रहा है उसका ज्यादा संबंध इमीडिएट जो इसके पहले का बर्थ है उससे है, इमीडिएट 83rd, उसकी भी कुछ बातें पता चल जाए ना तो यहां अच्छा हो जाएगा, वो थेरेपी है एक्चुअली। हाँ तो हम कुछ कर सकते हैं ना प्रयोग योग के। तो कॉम्बिंग करना है रोज, ये एक मेथड है ऑरा क्लेंसिंग की, ठीक है। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड अभी थर्ड, उसके बाद में है सन रेज, सनशाइन। कई लोग सूरज से बहुत दूर भागते हैं और जो जितना सूरज से दूर रहते हैं वो थोड़े उदास रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं, कमरे में ही बंद रहते हैं। सुबह से लेकर रात तक की दिनचर्या में सूरज कहीं है ही नहीं, है ही नहीं उनके जीवन में। बड़े बड़े शहरों में रहने वालों को तो सूरज न कब उगता है और कब डूबता है पता ही नहीं चलता है, सूरज है या नहीं वो भी नहीं, कोई लेना देना ही नहीं है सूरज से। सूरज की किरणों में हीलिंग एनर्जी है, जितना सूरज की किरणों में रहोगे, इवन कमरा भी, लोग हमेशा खिड़कियां बंद दरवाजे बंद, आने दो खिड़कियों से किरणें, आने दो अंधेरा दूर करो, धूप छाओ। सूरज सनबाथ, सनबेदिंग, सनगेजिंग की हमने चर्चा की थी पिछली भट्टी में, पर यह है सनबाथ, सूरज में घूमना। पसीना आता है तो उसको एंजॉय करना, आने दो पसीना, बहुत अच्छा, पढ़ने दो। शरीर हो या आत्मा हो, किसका रंग काला पड़ रहा है, आत्मा का कि शरीर का? आत्मा चमकेगी, आत्मा हल्की होगी, सूरज की किरणों में हीलिंग एनर्जी है। किसी एक लेखक ने लिखा है 1905 में, गो इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में जाओ, मेडिकल डिक्शनरी खोलो, उसमें जितनी बीमारियों के नाम है मुझे बताओ और मैं आपको बताऊंगा उन सभी बीमारियों का एक ही इलाज है, और वो है सूरज की किरणें, सनरेज। बहुत पावरफुल ऊर्जा है उसमें, मूड एलिवेशन होता है उससे, मेलाटोनिन ये सब सिक्रीशंस होता है, बहुत सारी चीजें हैं साइंटिफिक भी। तो इससे हमारा ऑरा बढ़ता है, ऑरा क्लेंज होता है, जो डार्क एनर्जी है सुबह से लेकर रात तक एक ही कमरे में बैठे हुए, बीमार है, कुछ दर्द है, बाहर निकलते ही नहीं, सूरज में धूप में जाके बैठो थोड़ी देर, एनर्जी आएगी, मूड बदलेगा। डिप्रेशन का एक कारण है विटामिन डी डिफिशियंसी, सबसे ज्यादा विटामिन डी मिलेगा बाहर, खाली विटामिन डी नहीं सारे मिलेंगे। संकल्प ये करो कि मुझे जो कुछ चाहिए सूरज की किरणों से मिल रहा है, सब बिलीफ पर है, वो सब कुछ मिलेगा अपने आप। तो थर्ड मेथड सनशाइन, फोर्थ मेथड वॉक इन द रेन। जब मंद मंद बारिश हो, बूंदा बूंदी हो, हम क्या करते, भागो भागो भागो, बारिश आ गई, भागो, छाता निकालो, रेनकोट, चलो पहुंचना है जल्दी पहुंचो, क्या करे, और फिर बारिश को कैसे मुंह बनाते हैं, कैसे कोसते हैं अजीब ढंग से, स्वस्थी बारिश, टिकाऊ बारिश। इतनी अच्छी बारिश पर हम लोग बहुत कोसते हैं, एकदम बारिश आ गए ना, मोबाइल खराब हो गया, ये हो गया, कपड़े गंदे हो गए, कितना उसको गालियां देते, कितनी निगेटिव एनर्जी निकलती है। बारिश की एक एक बूंद में ऊर्जा है, इस संकल्प से जाओ। अगर भीग भी गए जल्दी नहीं, ठीक है भीगने दो, कुछ नहीं होगा, थोड़ी सी बूंदा बूंदी हुई उसमें चलना, ऐसा का। हाँ जब बिजली बिजली हो रही है तब नहीं चलना, नहीं तो कहेंगे ये क्या बता दिया। हल्की बारिश, रिमझिम बारिश, इंग्लिश में कहते हैं ड्रिजल, जब ड्रिजल हो, ड्रिजल, उस ड्रिजल में चलना और क्या अनुभव करना, कि बारिश की एक एक बूंद मेरे शरीर का को स्वच्छ कर रही है, मेरे मन की निगेटिव एनर्जी जा रही है, डार्क एनर्जीज है वो सब वॉश आउट हो रही है, एक एक बूंद में मुझे शक्ति मिल रही है, एक एक बूंद से मुझे शक्ति मिल रही है, ये अनुभव करना। एक विदेश की बहन है जिसने 40 दिन तक उपवास किया था, 40 दिन के उपवास में उसको पूछा गया तुमको एनर्जी कहां से मिली, भोजन तो तुम खा नहीं रही थी, उसने कहा था, मैं बहुत सारी बातें बताई, उसमें एक बात यह थी, हमारी जो बस है रोज जाती थी एक झील के वहां से जाती थी, और जब झील के वहां से पुल के ऊपर से बस गुजरती थी, मैं ये सोचती थी यहाँ के पानी से मुझे ऊर्जा मिल रही है। पानी तो पी नहीं रही है, तो ऊर्जा कहाँ से मिल रही है? पानी के, वो झील के पानी से मुझे जो कुछ चाहिए, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, सब कुछ मुझे उसी से मिल रहा है, और दृष्टि से मिल रहा है केवल। ये कोई आध्यात्मिक स्त्री नहीं है जो ये बता रही है। मन की बात है, संकल्पों की बात है, जो हमने मन में सोचा सब बिलीफ सिस्टम है, ये मुझे जरूरी है। एक दारू पीने वाला सोचता है दारू मेरे लिए बहुत जरूरी है, फिजियोलॉजिकल नीड है उसकी, वो नहीं पीता है तो उसको बेचैनी होती है, उसकी मान्यता वैसी बन गई है। इसलिए तो वॉक इन द रेन, कोसना नहीं उसको, गिरने दो, थोड़ा अनुभव करो क्या हो रहा है। जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान बरसात है। ये कौन सी बरसात हो रही है? ज्ञान की बरसात हो रही है। स्वच्छ हो रहा हूं मैं, ऐसा अनुभव करना, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट, सेल्फ लव, अपने आप से प्रेम करना। हमने अपने लिए इतनी घृणा भर के रखी है, एक पाप क्या कर लिया छोटा मोटा, अब तक भूले नहीं है, 10 साल है अभी तक पश्चाताप जारी है। चलो ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि पाप को बढ़ावा नहीं दे रहे, पर एक बार कभी बाहर से कुछ खा लिया था, बस अपने आप को कोसे जा रहे। पश्चाताप इतना बड़ा है, इतना सा तो पाप था छटाक भर का, पर पश्चाताप टन भर का पश्चाताप जारी है अभी तक, और वो पश्चाताप करना है, परंतु पश्चाताप एक ही बार किया जाता है, जीवन भर नहीं। गिल्ट कॉन्शियसनेस में जी रही है चेतना, मेरे से पाप हो गया, मेरे से अपराध हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ, या कोई निगेटिव रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप में इतना ज्यादा डिस्टर्बेंस हो चुका है कि वो निगेटिव एनर्जी क्रिएट किया है उस रिलेशनशिप ने, वो रिलेशनशिप ठीक ही नहीं हो रहा, हीलिंग ही नहीं हो रही है उस रिलेशनशिप की, और उसका पश्चाताप जारी है। अरे वो आत्मा अपनी नई यात्रा चालू कर चुकी है, तुम भी अपनी नई यात्रा चालू करो। हर आत्मा अपने अपने इंडिविजुअली आगे बढ़ चुकी है, अब वो नहीं रही है जो 10 साल पहले थी, जो हम सोच रहे हैं ऐसा है वो वैसा हो, हर एक अपने मार्ग में आगे बढ़ चुका है, हर एक अपने पर्सनल लाइफ में अपना पर्सनल ग्रोथ करके आगे बढ़ चुका है, हम सोच रहे ऐसा हो वैसा हो, वैसा नहीं है अभी। इसलिए अपने लिए प्रेम उत्पन्न करना है, कैसे करेंगे? मेरे जैसा कोई नहीं हूं, मैं कितना अच्छा हूं, और क्या करेंगे? मिरर मेडिटेशन करना, आईने के सामने जाके मिरर मेडिटेशन, अपनी ही महिमा करना। क्या महिमा करेंगे? बहुत बढ़िया, अरे मैं एक तो ये, और क्या महिमा करेंगे खुद की, कितना अच्छा मेरा शरीर है, और स्वस्थ है, हेल्दी है, एनर्जेटिक है, कितना काम कर सकता हूं। कितने दुखी लोग हैं संसार में, उनके कंपैरिजन में तो हम बहुत अच्छे हैं, और अपनी महिमा कैसे करेंगे? भगवान की दृष्टि मुझ पर पड़ी है, भगवान के महावाक्य हमने सुने हैं, भगवान को इस धरा पर कर्म करते हुए हमने देखा है, हम उस धरा पर रहते हैं जहां भगवान के चरण कमल पड़े हैं, इस मधुबन भूमि में हम रहते हैं, मधुबन निवासी है, कितना बड़ा नशा है ये, धन्य भाग वनपंत पहारा, जहां जहां नाथ पाव तुम धारा, जहां भगवान के चरण पड़े हैं वहां हम रहते हैं, कितना नशा चढ़ना चाहिए मंजू बहन तुमको। बाबा कहते हैं तुम्हारे दिमाग की नस फट जानी चाहिए, इतना नशा चढ़ना चाहिए तुमको, पता नहीं क्यों नहीं चढ़ता, डोज कम है, डोज को बढ़ाओ, डोज बढ़ाना है। तो सेल्फ लव, अपने लिए, अपने आप को माफ करो, बहुत ही सख्त बने बैठे हो अपने लिए, दूसरों को तो माफ कर दिया, इसको माफ किया, उसको माफ किया, सबको माफ कर दिया, और अपने आप को नहीं किया। सेल्फ मर्सी, सेल्फ कंपैशन, सेल्फ पार्डन, खुद को माफ कर दो, तो ये मत कहते रहो पापी हो, तुमने बहुत बड़ा पाप किया। ठीक है, हो गया, अभी बीती तो बीती, दादी कहती है रात गई बात गई खत्म, अब कब तक उसको आगे खींचते रहोगे, हमने ये कर लिया वो कर लिया। अरे ठीक है, इधर इतने बड़े बड़े पापी बैठे हैं सारे, तुम्हारा क्या पाप है, तुम्हारा समोसा खा लिया था एक बार दुकान का, अरे तो क्या करना है, अपने लिए प्रेम उत्पन्न कर, पर दूसरों के लिए नफरत नहीं। अपने लिए प्रेम अर्थात ये नहीं कि दूसरे छोटे हैं मेरे से, ये तो हमें अपने गिल्ट से निकलना है, क्योंकि जब तक गिल्ट है, जब तक अपराध भाव है, दोषी भाव है अंदर, हमारे वाइब्रेशंस नहीं बढ़ेंगे, वाइब्रेशंस लोअर लेवल पर ही रहेंगे, हम उसी लेवल पर ऑपरेट करते रहेंगे। तो ये एक, उसके बाद में नेक्स्ट मेथड, कट द कॉर्ड। कट द कॉर्ड, हम लोग आत्माओं से जुड़े हुए हैं, एक सिल्वर कॉर्ड है जैसे नाभि सोलर प्लेक्सस से निकलकर उस आत्मा तक जुड़ रहा है, एक निगेटिव रिलेशनशिप है, उसको कहते हैं कॉर्ड्स। अमृत वेला, एक सीजर लेनी है इमेजिनरी ऐसी, बट जो नेगेटिव रिलेशनशिप है, जो नेगेटिव एनर्जी, किसी आत्मा से जुड़े हुए हैं, जैसे यहां से वहां जुड़े हुए, कुछ ना कुछ हो रहा है, वो कुछ सोचता है मेरे बारे में, मैं कुछ उसके बारे में, तो वी आर कनेक्टेड विद द कॉर्ड, कट दैट कॉर्ड एट अमृत वेला। या फिर सोचो मैं ये और ये वो, जैसे लाइट बॉडी है, दोनों भी लाइट बॉडी, और ऐसे एनर्जेटिक लिंक्स है बहुत सारी, और ये दुख के लिंक्स है, हस्बैंड वाइफ, फ्रेंड्स, ब्रदर सिस्टर, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमारी, कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी है बीच में, घृणा की है, नफरत की है, वासना की है। आज कहा ना प्रश्न उत्तर, ब्रह्मा कुमारी क्या देखे, महावीर है, ब्रह्मा कुमार क्या देखे, माँ है, बहन है, शक्ति है, तब दृष्टिवृत्ति परिवर्तित होगी। ये कोई साधी नहीं है, साधारण नहीं है कोई, इसको बहन ना समझो, माँ भी नहीं समझो, कौन है, शेर पर सवार दुर्गा, हाथ में क्या है, तलवार। ज्यादा कुछ किया ना, सीधा इधर अंदर। तो कॉर्ड को कट करना है। ऐसी कौन सी आत्मा है जिनसे हम नेगेटिव रिलेशनशिप्स हैं, उनको इमर्ज करना, वो यहाँ मैं यहाँ एनर्जी, ये कॉर्ड्स बहुत सारे हैं ऐसी रस्सियाँ, और फिर एक कैची निकालनी है इमेजिनरी, कट 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 कट। एक दूसरा भी अभ्यास किया जा सकता है, शरीर में भी बहुत सारी एनर्जीज है नेगेटिव, दूसरी आत्माओं से, उनको भी कट कट करते जाने से, कट कर दो, करो ऑपरेशन, साइकिक सर्जरी इसको कहते हैं, साइकिक सर्जरी। इस पे बहुत सारी किताबें लिखी हुई है लोगों ने, साइकिक सर्जरीज, यहां बैठे बैठे किसी और को हील करना, साइकिक सर्जरीज, मन से ही कट करो। हम एक जगह मेडिटेशन के लिए गए थे बहुत पहले, तो ऐसे बैठे थे, तो एक बहन थी वो बैठी थी, उसके पैर में बहुत दर्द हो रहा था, तो वो टीचर के पास गई और टीचर से कहने लगी, सर मैं नहीं बैठ सकती यहाँ, मुझे बहुत दर्द होता है। तो उसने समझाया बैठो, क्योंकि वो लॉन्ग मेडिटेशन सेशंस थे, बहुत पहले की बात है, 10-10 घंटा। फिर वो फिर गई, फिर उसके बाद वो कहते हैं बैठ, मुझे तुमको दर्द क्यों होता है, बोलती मुझे पता नहीं, वो कहते तुमने माँ बाप को लात मारी होगी ना किसी को लात मारी होगी इसलिए दर्द होता है वहां तो बहुत सारे पुराने जन्मों के विकर्म है हमारे साथ, उनको हमको हटाने, कट द कॉर्ड। तो ये भी एक मेथड है जिससे हमें अपना ऑरा स्वच्छ करना है, क्लेंस करना है। उसके बाद में है स्मजिंग, SMUDGING। ये थोड़ा स्थूल है, जैसे जलाना, धूप वगैरह जला दे ना, स्मज, जैसे धूप से वो पूरा ऑरा क्लींस होता है। जैसे यज्ञ देखा है आपने किसी ने, गायत्री परिवार यज्ञ देखा है, जब बड़े बड़ा मैदान होता है, यज्ञ करते हैं, वो क्या क्या डालते हैं, चंदन, क्या क्या होता है, तेल, जो बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, उससे वातावरण कैसा एकदम प्रसन्न होता है, उस वातावरण में जाने के बाद एकदम स्वच्छता अनुभव होती है, एकदम फ्रेशनेस आ जाती है अपने आप। वैसा ही घर में भी किया जा सकता है, ऐसे बहुत सारे धूप कहो या और कुछ अलग अलग मेथड्स है इसकी, स्मजिंग की। सेज थाइम सीडर अलग अलग है, वो आप पढ़ सकते हो कि स्मजिंग कैसे किया जाए. तो उस दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेथड ऑफ क्लेंजिंग, ऑरा क्लेंजिंग. लोहान, लोहान हाँ. आप दरगाह पे जाओ, कैसा वहाँ पे अजीब सा वायुमंडल होता है. कोई दरगाह होते ना, हम लोग बहुत पहले बचपन में, वो हमारे पास उधर ताजुद्दीन बाबा का दरगाह था, वहाँ हम जाते थे. वहाँ ऐसी धूप, अजीब सा लगता था, बहुत अच्छा लगता था. तो ये भी एक मेथड है जिससे क्लींस किया जा सकता है. उसके बाद में हाँ, कैम्फर से भी होता है, किसी से भी. मतलब ये क्यों हम बाबा के कमरे में अगरबत्ती ये सब जलाते, ये भी एक स्मजिंग ही है एक रीति से. जरूरी नहीं है वैसे तो, बट हम फिर भी करते हैं. किस लिए? एनर्जी, एनर्जी फील होती है मंदिर में जाते ही. क्या एनर्जी फील होती है? एक भावना भी होती है और एकदम प्यूरिटी के भाव जागते हैं. किसी भी मंदिर में जाओ, अगरबत्ती जल रही, आह एकदम स्वच्छ. कोई पापी से पापी भी चला जाए, उसके मन में भी परिवर्तन होता है. तो स्मजिंग. उसके बाद में है स्थूल में विंड चाइम. विंड चाइम पता है ना, वो क्या कहते हैं उसको, विंड चाइम को जो बजता है, ये यहाँ लगा हुआ है ना, वहाँ घंटिया, बेल्स बेल्स, वो विंड चाइम. या उसी के साथ एक होता है हिमालयन रॉक्स, हिमालयन बल्ब, सॉल्ट बल्ब. सॉल्ट बल्ब पता है ना, वो ऐसा पत्थर का होता है, सॉल्ट लैम्प पत्थर का होता है, उसके अंदर लाइट होता है, वो भी एनर्जी को क्लेंस करता है. उसको तो कुछ नहीं करना है, वो रख दो बस. पर हमारी एक्चुअली क्लेंजिंग जो होती है यहां होती है बस. मेन तो इंटेंशन क्या है, नहीं तो वो केवल रिचुअल बन जाएगा. बस वो करना है करने है, रख दिया. भावना क्या है हर चीज के पीछे, किस भावना से किया जा रहा है. तो ये विंड चाइम, सॉल्ट लैम्प, ये सारा उसी के लिए है कि एनर्जी क्लेंस हो. और एक महत्वपूर्ण चीज, अपने कमरे में, घरों में जो भी अनुपयोगी वस्तु है उन सबको बाहर फेंको. एक अलमारी है, इतनी चीजें भर रखी है उसमें, एकदम पुराने से पुरानी जो कभी काम की नहीं है, कभी तो कभी यूज होगा, कभी तो कभी यूज होगा, पर वो निगेटिव एनर्जी थ्रो कर रहा है. एक सतरंजी है, एक चादर है, वो पूरा रखा हुआ है, 6 महीने से खोला ही नहीं उसको, कितने डस्ट उसमें गैदर हो गई है, निगेटिव एनर्जी इमिट कर रहा है. हमारे घर का जो वायुमंडल है हमको स्वच्छ करना है. कैसे स्वच्छ करेंगे? खुलिया खिड़कियां खुली रखो, या फिर फ्लावर्स प्लांट ये सब चीजें अंदर होनी चाहिए. सफाई करना बार बार, ये सबसे क्लेंजिंग का मेन एम यही है कि हमें ये क्लेंजिंग कई बार करते रहना है. स्थूल भी, शरीर भी, और सूक्ष्म भी, सब एनवायरमेंट भी, सराउंडिंग्स भी. तो ये एक पॉइंट है इसमें, ये दो चीजें फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में, क्लीन द सराउंडिंग्स. जो हमारा घर है उसको बार बार स्वच्छ करना है, बार बार. ऐसी कोई चीज वहां नहीं रह जाए कि जो अनयूज्ड है और हमने ऐसी रखी हुई है. जैसे ड्रॉवर है, एक ड्रॉवर खोलो, कितनी वस्तु है उसमें, कभी क्लीन किया उसने? जो आया डाला उसने, डाल दिया. रोज नई नई चीजें डाली. अगर आप टेबल है आपका ऑफिस टेबल, उस ऑफिस टेबल में कितनी चीजें रखी है, कम से कम चीजें हो. ये जो डेस्कटॉप है, उसके डेस्कटॉप में कितने फोल्डर्स है, कम करो. इतने फोल्डर्स क्यों चाहिए? 1-2 फोल्डर्स रखो बस. कंफ्यूजन होता है कौन सा फोल्डर कहाँ है, ये ऑडियो उधर डाल दिया, उस फोल्डर में गड़बड़, क्लास आज की ऑडियो पुराना. ये इसके भी क्लेंजिंग चाहिए, कंप्यूटर क्लेंजिंग, हर चीज की क्लेंजिंग चाहिए. चप्पल का जो रखने का जो है ना शू रैक, उसमें कितना गंदगी है, उसको क्लीन करो, क्योंकि उसमें से भी घर में निगेटिव एनर्जी घुस रही है. पहलते कभी नहीं है और पड़ी है ढेर सारी. दान करो, किसी का कल्याण हो जाएगा, खुश हो जाएगा. मधुबन निवासी की चप्पल है, नाचेगा बेचारा. मधुबन के वाइब्रेशन से चप्पल होंगे. तो ये भी एक मेथड है कि हमें अपना एनवायरनमेंट, जहां हम रहते हैं, जो कमरा है, वो क्लीन हो, अच्छे से क्लीन हो. कलर्स कौन से है दीवारों के, पोस्टर्स पिक्चर्स कौन से. एक ही चित्र लगाया है 15 साल हो गए, उसको निकाल ही नहीं रहे. अरे हटाओ, चेंज करो उसको ना, नया स्लोगन डालो कोई, वही 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 सब कुछ. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां जाते ही मन प्रसन्न हो जाए, तब ऑरा क्लेंस होगा, आने वालों का भी और हमारा भी. तो इसको कहते हैं क्लीन दी एनवायरनमेंट. किचन में जाओ, कैसा किचन रहता है हर दिन. किचन का निरीक्षण कब करना है पता है माताओं को? अमृत वेला, बहुत पावरफुल स्टेज होती है अमृत वेला, किचन में एंट्री करो और देखो कौन सी अनुपयोगी चीज है, इतने डब्बे, कम करो डब्बों को, ये इधर घुसा के रखा है, उधर घुसा के रखा, निकालो जो जो काम के नहीं है वो उसको एक कर दो, 10 मिनट अमृत वेला किचन में जाओ निरीक्षण के लिए कि कौन की वस्तु फेंक दी जा सकती है, क्योंकि सारे दिन भर तो इतना मोह होता है, एक चम्मच भी बिछो ना हो एक चम्मच को भी नहीं छोड़ सकते। हाँ अमृत वेले वैराग की स्टेज होती है, उस टाइम में फेंका फाकी कर सकते हैं थोड़ी सी, ये फेंकने का काम जो है ना अमृत वेला करना, किचन को साफ करने का, क्योंकि दिन में लगता है इसको कैसे फेंकू, ये कभी तो काम आएगी, फिर दोपहर में फिर ढूंढो, ये भी होता है पर वो तब मिलती नहीं, बहुत लेट हो चुका है, ये चलेगा बहुत दिन, सुबह सुबह वैराग आता है दोपहर में उसको ही ढूंढो, उसको ही वापस लाओ, सही में ऐसा होता है। उसके बाद में नेक्स्ट मेथड शिनरिन योको, शिनरिन योको जंगल बाथ, जंगल स्नान, शिनरिन योको कहते हैं इसको। क्या करना है, निकल जाना है जिस दिन छुट्टी हो ना, अकेले अकेले निकलो, यहाँ की बात नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड जहां सेफ जगह है वो सब देखते हुए, शिनरिन योको अर्थात जंगल बाथ। जंगल में जो ऊर्जा होती है बहुत हाई लेवल की ऊर्जा होती है, जहां मनुष्य का कोई प्रदूषण फैलाया हुआ नहीं है, जहां गाड़ियों की आवाज नहीं है, जहां मनुष्यों की आवाज नहीं है, ऐसे जंगलों में जाओ, दो लोग जाओ, तीन लोग जाओ, ग्रुप से जाओ, पर मौन में जाओ और पेट खाली, पेट भर दिया ना तो एनर्जी कम, फूड डिक्रीजेस द एनर्जी, वो सबसे बेस्ट है, उसमें ना तो पेस्टिसाइड है ना कुछ है, जंगल में जो उगे हुए है जो फल, नेचुरल करवंदे कुछ भी जो भी है, जंगल में बहुत हाई एनर्जी रहती है। कई लोग माउंट में है परंतु आज तक कभी जंगल की यात्रा नहीं की, बस मधुबन अपना कमरा नक्की का एक राउंड हो गया खत्म, इतनी पहाड़ियां, इतना सारा प्रकृति का वायुमंडल है पता ही नहीं क्या है, और जाते भी हैं तो कैसे जाते हैं, नहीं नहीं डरते डरते नहीं, पिकनिक के इससे जाते हैं, क्या लेके जाते हैं, थैले के साथ, उसमें भेल का सारा सामान है, वहां गए फिर फोटो वीटो निकाला, फिर उसके बाद में 10-15 मिनट योग किया, वो भी ऐसे क्या किया पता नहीं, और फिर भेल, क्योंकि योग में भी चिंतन क्या है, अभी भेल खानी है, भेल खानी है, भेल खानी है, पिकनिक सैंडविच खाना है, ये खाना है, बस वही चिंतन चल रहा है, फिर वो किया वो किया, बात किया, फोटो वीटो निकाले, सेल्फी विल्फी, और चलो आज बड़ा फ्रेश लग रहा है, काहे का फ्रेश, फ्रेश इससे सब थोड़ी ना होता है, बिल्कुल नहीं होता है इससे, मौन मेडिटेशन करना है, फॉरेस्ट मेडिटेशन, वहां जाके बैठ जाओ चुपचाप ग्रुप में, और वहां की जो प्रकृति है उन सारी आवाजों को सुनो, पंछी, पेड़, पत्ते, इससे एनर्जी बढ़ती है। तो ये मेथड है फॉरेस्ट बाथ, इसको कहते हैं शिनरिन योकु, ठीक है, तो ये बीच बीच में करना है, अगर जो नहीं जा सकते फॉरेस्ट में, गार्डन में जाए, जहां भी प्राकृतिक स्थान है, ये बाजू में यहाँ जाओ, कहीं पर भी जाओ। उसके बाद में नेक्स्ट मेथड सन गेजिंग, ये तो हमने काफ़ी दो सेशंस में डिस्कस की थी लास्ट टाइम, सूरज को देखना और उससे ऊर्जा लेना, धीरे धीरे क्या होती है, हंगर सेंसेशंस कम होने लगते हैं और शरीर पावरफुल होने लगता है, बहुत सारे संकल्प किए जा सकते हैं यहाँ पर, जैसे सूरज ज्ञान सूर्य, मैं भी ज्ञान सूर्य हूँ, उसकी सारी एनर्जी मुझ में आ रही है, सब कुछ मुझे प्राप्त हो रहा है, सूरज से दोस्ती कर लो। उसके बाद में बेयरफुट वॉक, ये भी पिछली बार बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, धरती पर चलते समय अनुभव करो कि धरती की सारी ऊर्जा मेरे पैरों से मुझ में आ रही है, मेरी सारी निगेटिव एनर्जी जा रही है, पॉजिटिव एनर्जी मुझ में भर रही है, पावर आ रही है मुझ में, पूरा इलेक्ट्रिक चार्ज हो रहा हूं, मेरा शरीर जैसे एक बैटरी है, ऊर्जा आ गई, बैटरी फुल, अब क्या खाऊं, बैटरी फुल है, टंकी फुल, क्या डालूं, और अंदर से स्थूल भोजन की आवश्यकता कम कम होती जाएगी, क्योंकि सारे जितना भी फूड हम लेते हैं कुक प्रोसेस्ड, वो सारे वाइब्रेशंस को कम करता है, वो फूड हो जिसमें प्राणिक ऊर्जा हो, प्राणिक फूड कहते हैं उसको, हाई लेवल ऑफ एनर्जी, फ्रूट्स वेजिटेबल्स जिसको मनुष्य ने डैमेज नहीं किया है, अनटच्ड, उसमें एनर्जी होती है, हम जो खा रहे हैं वो तो डेड फूड है, उसमें कहाँ कुछ ऊर्जा है, सन ट्रैप्ड एनर्जी जिसमें है वो फ्रूट से, वो खाओ, उसमें हाई एनर्जी होती है, और यहाँ तो हम डायरेक्ट ही ऊर्जा ले रहे हैं, डायरेक्ट धरती से, तो बेयरफुट वॉक, वो भी एक मेथड है अपने वाइब्रेशंस को बढ़ाने की। उसके बाद में वाटर चार्जिंग, वाटर चार्जिंग कैसे करेंगे, अलग अलग मेथड से। एक तो सूरज में के पास रख दो, लास्ट टाइम भी हमने देखा था, जो बॉटल कांच की बॉटल हो, पानी भरो, दिन भर रख दो, उस पानी को यूज़ करो, सो सन चार्जिंग हो जाएगा वो। फिर उसके बाद में कुछ लोग उसमें रोज़ पेटल और ये सब भी यूज़ करते हैं, उससे भी होता है। सबसे बेस्ट मेथड है दृष्टि से चार्जिंग, संकल्प से, कि मेरे आँखों से प्योरिटी की ऊर्जा जा रही है और वो पानी चार्ज हो रहा है। और डॉक्टर इमाटो मास्रो का जो एक्सपेरिमेंट है, उन्होंने कहा कैसे संकल्पों का प्रयोग पानी पर, तो हमारा शरीर तो मैक्सिमम पानी से बना हुआ है, तो उस पर वो प्रभावित करेगा। और केवल पानी नहीं, जूस भी, जूस भी पीते हैं तो किस संकल्प से पीना है, कि ये जूस नहीं शुभ रस है और ये मैं पी लूंगा ना, अभी मुझे फिर किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, स्थूल भोजन की, सॉलिड फूड की, लिक्विड्स, बॉडी में लिक्विड लिक्विड जाएगा ना, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम एट रेस्ट रहेगा, उसको काम कम करना पड़ेगा, क्योंकि उसको डाइजेस्ट नहीं करना है, एसिमिलेट करना है लिक्विड्स को, तो वो एनर्जी देगा, तो उसको भी चार्ज करना है, जो भी हम पीते हैं उसको चार्ज करना है इस संकल्प के साथ कि ये क्या है, शुभी रस। आज की मुरली में क्या कहा बाबा ने, बाबा के सामने भोग लाया गया, बाबा ने कहा कि आज बाबा दृष्टि से भोग स्वीकार करेंगे। ऐसा करना, कई बार भूख लग गई जाओ भंडारे में, वो जो उसको दृष्टि से सामने है, हो गया आज का भोजन हो गया, बाप समान ईटिंग प्रैक्टिसेस। आज की मुरली में दादी ने बाबा को भोग स्वीकार किया, बाबा ने कहा बाबा आज दृष्टि से भोग स्वीकार करेंगे। ये पेट सिकुड़ जाए और सतयुग जैसा हो जाए, ये जो पेट है ना, जो इतना बढ़ गया है हमारा पेट, मतलब अंदर का स्टमक, ये इवोल्यूशनरी चेंज है, इसका बहुत बड़े साइंटिफिक कारण है। जब मनुष्य धरती पर आया, हिज एब्डोमेन, हिज स्टमक वॉज इन द रूडिमेंट्री स्टेज, क्योंकि उसका काम ही नहीं था ज्यादा, ही यूज टू सर्वाइव ओनली ऑन सनलाइट। फिर उसने पानी लेना चालू किया, रेन वाटर, फिर उसने और नीचे आया हो, फिर फ्रूट्स लेना चालू किया। सतयुग में आए बराबर भोजन थोड़ी करते थे वो लोग, उनको जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हाई एनर्जी थी, बॉडी इतनी प्योर थी, प्योर बॉडी डजंट रिक्वायर फूड, वो तो केवल सूरज की किरणों से ही। फिर द्वापर आया, फिर फ्रूट, फिर उसके बाद में द्वापर चालू हुआ, फिर नॉनवेज चालू कर दिया, फिर उसके बाद में खेती चालू कर दी, ये सब डिटियोरेशन चालू हो गया यहाँ भोजन का। हाई एनर्जी जो थी वो कम कम होने लगी, जो लंबी उम्र थी वो कम होने लगी, लॉन्जिविटी, नहीं तो बूढ़ा हम होना ही नहीं चाहिए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है एनर्जी बढ़नी चाहिए हमारी, यहाँ तो खाट ही पकड़ लेते सीधा। तो कहाँ थे हम, वाटर चार्जिंग, तो एनर्जी उसको दृष्टि से चार्ज कर देना है और धीरे धीरे पीना है उसको। बेस्ट है पानी नहीं, अगर जूस है तो चम्मच से, जूस पीना अर्थात स्पून, चम्मच लिया, जूस पिया, चम्मच वापस रख दो ग्लास में, फिर उठाओ, फिर पियो, इससे बहुत स्लोली स्लोली, मतलब एक ग्लास के लिए आधा घंटा लगना चाहिए। हाँ, यही तो काम है सबसे मेन। उसके बाद में है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन क्या, ये इमेजिन करो कि हमारे इर्द गिर्द, सुबह उठते ही और रात को सोते समय, ये दो मेथड्स है। सुबह उठते ही सोचो कि ये मेरे पूरे शरीर में एक प्रोटेक्टिव शील्ड है, एक ऑरा है, सुरक्षा कवच के साथ हूं मैं। और ये सुरक्षा कवच में आज सारे दिन भर कितने भी निगेटिव वाली एनर्जी वाले लोग आ गए, मुझे प्रभावित नहीं करेंगे, क्योंकि ये संसार में इतनी निगेटिव एनर्जीज है और लोग हमको भेज रहे हैं दूर दूर से, फिर भी फिर भी हम जी रहे, क्योंकि हमारी पावर ज्यादा है। तो अपनी एनर्जी एनर्जी फील्ड निर्माण करनी है, इसको कहते हैं साइकिक डेब्री, जो होती है साइकिक डेब्री, साइकिक गार्बेज, उसको क्लीन, हमारा एक ऑरिक फील्ड होता है, ये ऑरिक फील्ड को कवर करने के लिए इमेजिन करो कि मैं एक इसमें हूँ, शील्ड में हूँ, या उसमें आप बाबा की छत्र छाया में हूँ, या उसकी किरणें आ रही है, ये एक मेथड। नेक्स्ट मेथड, सबसे पावरफुल मेथड, मेडिटेशन, राजयोगा मेडिटेशन। इसमें तो हमारी एनर्जी अपने आप क्लींस हो जाती है, अपने आप। इसलिए कहा कि ये 84 दिन, कितना टारगेट रखना है, 8 से 10 घंटा, बहुत बड़ा टारगेट है। 5 घंटा भी करना मतलब कितना सारी दिनचर्या ऊपर नीचे करनी पड़ती है, बैठ का योग, बैठ के योग, फिर भी होगा 5 घंटे तक पहुंचते भी बहुत मुश्किल है। हमने टारगेट रखा है 8, कम से कम। छुट्टी के दिन तो हो जाएगा, पर छुट्टी के दिन दूसरे दूसरे काम आ जाते हैं। यहाँ मन की बात है सारी. तो मेडिटेशन सबसे पावरफुल मेथड है. उसके बाद में ब्रीदिंग. ब्रीदिंग में क्या, श्वास आ रहा है, पॉजिटिव एनर्जी अंदर जा रही है, निकालते समय निगेटिव एनर्जी आ रहा है. कहाँ करना है, प्रकृति में. किसी पत्थर पर जाकर बैठ जाओ और 15 मिनट अपने आप को संकल्प दो, अभी मैं ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर रहा हूँ. लंबी श्वास लेना, एनर्जी आई, जा रही है निगेटिव. कौन सी जा रही है, क्या जा रहा है, जो अंदर दुख है वो जा रहा है, जो भय है वो जा रहा है, जो गिल्ट कॉन्शियसनेस है वो निकल रहा है. ये ब्रीदिंग मेथड बहुत पावरफुल मेथड है ऑरा क्लेंजिंग की. उसके बाद में नेक्स्ट मेथड है ब्लोइंग रोजेस विजुअलाइजेशन. इसमें हाथ ऐसे करना है, सब लोग हाथ ऐसा करेंगे, सोचेंगे कि मेरे हाथों से ऊर्जा निकल रही है, हीलिंग एनर्जी निकल रही है. और फिर आंखें बंद करके ये सोचेंगे कि गुलाब के जो फूल है, ये कुछ मेथड्स दी हुई है, हम इसको अपने रीति से कर सकते हैं. मेरे सिर के ऊपर, मेरे पूरे शरीर के इर्द गिर्द गुलाब के फूल है और वो सारे गुलाब के फूल मेरे अंदर एनर्जी भर रहे. अभी अभी करेंगे, दो मिनट. मैं एनर्जी से भरता जा रहा हूँ, पॉजिटिव एनर्जी, हाई एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी, डिवाइन एनर्जी, और सारी नेगेटिव एनर्जीज जो है वो निकल कर बाहर जा रही है. तो इसको कहते हैं ब्लोइंग रोज मेडिटेशंस. उसके बाद में है कितना हो गया, 15, 16. उसके बाद में है मंत्रा, चांट मंत्रा. कौन सा मंत्रा चांट करेंगे, ओम नहीं, हमको मंत्र अपना बनाना है. कौन सा मंत्र बनाएंगे, अपना मंत्र बनाएंगे, कैसा, नहीं वो भी नहीं, मंत्र बनाना है. कैसे, मुरली के महावाक्य लेने हैं और उसको वैसे के वैसा रिपीट करना है. जैसे आज की मुरली में जो है ना, कि स्नेह मिलन में आए हुए सदा स्नेही बन, स्नेह की लहर विश्व में फैलाने के लिए. कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि किसी की विशेषता के कारण उससे विशेष स्नेह हो जाना लगाव है. आंखें बंद करेंगे, 21 बार रिपीट करेंगे मन ही मन इस वाक्य को. किसी से विशेष लगाव हो जाना, नहीं, किसी से, किसी की विशेषता के कारण उससे विशेष स्नेह होना भी लगाव है. किसी की विशेषता के कारण विशेष स्नेह हो जाना भी लगाव है. अब एक लाइन को लेके इसको कई बार मन में रिपीट करो. ये कर सकते हैं, एक मिनट देखेंगे इधर काउंटिंग के लिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, यहाँ तक रिपीट. तो काउंटिंग के लिए अच्छा होगा. तो ऐसे रख के किसी की विशेषता के कारण विशेष लगाव, विशेष स्नेह हो जाना भी लगाव है. ये एक पूरा, फिर दूसरा ऐसे स्टार्ट. पूरा तो नहीं करेंगे हम, जस्ट 2-3 करेंगे. ओम शांति. तो इस तरह से कोई भी छोटा सा वाक्य लेकर उसको 21 टाइम्स मन में रिपीट करना है. ये है मंत्रा. लास्ट अफर्मेशंस. अफर्मेशन अर्थात ऑटो सजेशन, आत्म सुझाव. अपनी उन्नति के लिए कोई भी एक वाक्य निर्माण करना है और उसको कई बार रिपीट करना. जैसे कोई भय है, हमेशा भयभीत रहता है. जैसे मेरा शरीर है, आई एम बिकमिंग रेडियंट, आई एम एन्जॉइंग रेडियंट हेल्थ, आई एम एन्जॉइंग रेडियंट हेल्थ, आई एम एन्जॉइंग रेडियंट हेल्थ. मेरा स्वास्थ्य दिन ब दिन ठीक होते जा रहा है, मेरी मेमोरी हर दिन शार्प होती जा रही है, अब मुझे कुछ भूलता नहीं है, सब याद रहता है. नहीं तो किसने क्या बताया, ये मेमोरी की वजह से बहुत लोग दुखी है, याद ही नहीं रहता है, क्या करे, क्या सेवा दी, किसने क्या दी, कन्फ्यूज रहते. मेरा माइंड पावरफुल है, मेरा शरीर बीमारियों से मुक्त है. कोई भी अफर्मेशन लेना, उसको रिपीट करते रहना. या समान लो, कुछ भी लो, कुछ भी, एनीथिंग यू कैन क्रिएट. सो इसको कहते हैं अफर्मेशन. सो ये सारी मेथड्स किस लिए है, ऑरा क्लेंजिंग के लिए. तो कोई भी मेथड, और भी बहुत सारी है, हम अपनी खुद की निर्माण कर सकते हैं. ये तो कुछ बताई है, हम अपनी मेथड खुद ही निर्माण करें. जैसे किसी ऐसे स्थान पर जाकर बैठ जाओ जो बहुत प्योर है, जैसे मधुमन, ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ. वहाँ केवल बैठो, पर इस भाव से कि मैं कहाँ बैठा हूँ. नहीं तो वहाँ बैठने वाले लोग तो घूमते रहते, कुछ हो नहीं रहा है उनको. क्योंकि द सोर्स ऑफ एनर्जी इज माइंड, द सोर्स ऑफ पॉजिटिव ऑरा इज माइंड. अगर ये भाव मन में नहीं है, इंटेंशन नहीं है, तो काम नहीं करेगा. मन में क्या है. अच्छा, ओम शांति. सभी बैठेंगे 2 मिनट और सोचेंगे मेरे इर्द गिर्द एक बहुत पावरफुल एनर्जी फील्ड है. ओम शांति.
है।